हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण हरि 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 गौर हरि हरि हरि। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भगवान मथुरा में वृंदावन थे, वृंदावन से मथुरा पधारे, कंस वध के उपरांत अपने माता पिता से मिलन, वसुदेव देवकी से मिलन, कई संस्कार भी संपन्न होते हैं। एक तो विद्या ही ग्रहण नहीं की थी, अवंतीपुर जाके 64 दिनों में 64 कलाएं सीखते हैं, लौटते हैं, वृंदावन वासियों का खूब स्मरण आ रहा है। उद्धव को भेजे, कई मास महीने वहां बिता के उद्धव जी वृंदावन का समाचार लेके लौटे हैं। भगवान मथुरा को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब मथुरा के पालक रक्षक स्वयं ही बने हैं कृष्ण और बलराम। राजधानी का स्थान है, कंस का अभी अभी वध हो चुका है, स्थिति कोई सामान्य नहीं है। कई सारी बातें अनिश्चित है, कई प्रकार के विघ्न आने की संभावना तो थी ही, और अब वैसे ही हो रहा है। अस्ति और प्राप्ति नाम की कंस की दो पत्नियां स्त्रियां थी वे जरासंध की दो पुत्रियां। जब विधवा हुई तो अपने पिता जरासंध के पास पहुंची, दुख की वार्ता लेके मगधराज जरासंध दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने सुना आत्मवैधव्य कारणम। ऐसे सुखदेव गोस्वामी के शब्द ही बहुत मधुर लगते हैं, हम तो कुछ कहते ही रहते हिंदी भाषा में, लेकिन आत्मवैधव्य कारणम ऐसा कुछ कहते थे। वो विधवा कैसे क्यों बनी, क्या कारण हुआ, ये सब समाचार सुनाया तो जरासंध दुखी हुए, शोक भी किए और साथ ही साथ संकल्प भी। याद अभी मही कर तुम, इस मही को पृथ्वी को कैसे बनाऊंगा मैं अयादवी, इस पृथ्वी पर कोई यदु नहीं बचेगा अब। कृष्ण यदु वंशज यदुनाथ, मेरे पुत्रियों के वैधव्य का वे कारण बने हैं, तो मैं अब संकल्प लेता हूं अयादवी महिम कर तुम। इस संकल्प के साथ जरासंध ने आक्रमण किया। 23 अक्षौहिणी सेना लेके मथुरा को घेर लिया। निरीक्ष तद बलम कृष्ण उद्वेलम इव सागरम, जैसे सागर भी अपनी सीमा को लांघ के कभी और भी आगे बढ़ता है, जैसे चेन्नई में आगे बढ़ा वो एक स्थान हमने कहा, वैसे कई सारे स्थानों पर लिमिट क्रॉस किया समुद्र देवता ने, कुछ कुपित हुए होंगे, हम वैसे अधिक अधिक विमुख हो रहे हैं प्रभु से। तो कुछ दिक्कतें कुछ विघ्न बढ़ते ही जा रहे हैं हम मनुष्यों के समक्ष के। तो कुछ दिनों से हम कथा में ही थोड़े व्यस्त थे, मग्न थे कह सकते हैं। इतने में आज समाचार आया, बात तो बड़ी गंभीर और दुख और शोक की है। हमारे ही परिवार के सदस्य, हमारा कितना बड़ा परिवार है वसुधैव कुटुंबकम, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं मनुष्य है वे हमारे परिवार के हैं। जब कथा प्रारंभ की हुई थी कुछ 3 रात्रि पहले की बात है, तब जो मनुष्य थे इस पृथ्वी पर आज वे नहीं रहे, बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य, स्त्री पुरुष अबाल वृद्ध अकाल मृत्यु को प्राप्त किए हैं। सारा संसार ही दुखी है और कुछ प्रयास भी कर रहा है सहायता करने का प्रयास। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, या आज की हमारी कथा और ये गान गीत इसी को प्रार्थना के रूप में स्वीकार कर सकते हैं प्रभु, ताकि वो सभी मनुष्य आत्माएं शांति को सद्गति को प्राप्त हो। यही प्रार्थना है। तो आपने सुनाई पढ़ाई अपना, आपको तो अधिक पता होता है इन बातों का, तो धरनी कम कुछ विशेष प्रकार का। और समुद्र में जल का मंथन और कई सारे मृत्यु को प्राप्त किए मनुष्य कई देशों में, भारत और श्रीलंका और थाईलैंड और कहाँ का अंडमान निकोबार उद्वेलम इव सागरम, जैसे सागर जैसे यहाँ कहा है, सागर भी कभी कभी लांग सकता है, अपनी सीमा के परे पहुंच सकता है। श्रील प्रभुपाद प्रातः काल में टहलने जाया करते, तो जब वे हवाई में थे, हवाई एक पैसिफिक सागर में द्वीप है हवाई, हम इस्कॉन केंद्र वहाँ भी है, तो प्रभुपाद गए थे, तो जब मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे समुद्र के तट पर, तो चलते चलते प्रभुपाद बीच में रुक गए, और जो शिष्य साथ में चल रहे थे वे भी रुके, और उस वक्त प्रभुपाद ने कहा, मयाध्यक्षे न प्रकृति सूयते सौ चराचर, भगवान की अध्यक्षता चलती है संसार में, देखो ये समुद्र, इस समुद्र को भगवान ने आदेश दिया है, देखो यहां से आगे नहीं बढ़ सकते थे, भगवान का आदेश, उस आदेश का पालन ये कर रहा है समुद्र सागर, तो फिर उन्हीं के ही वैसे आदेश से कभी लांघता भी है सीमा के पार आगे बढ़ता है, वो भी उन्हीं के आदेश से ही। संसार में कई प्रकार के दुख है, ये जो दुख है जो कईयों को हुआ, हजारों दुख या मृत्यु को ही प्राप्त किए, इसको आदि दैविक दुख कहते हैं, आदि दैविक और आध्यात्मिक और आदि भौतिक, तीन तापत्रय जिनको कहते हैं, तापत तीन प्रकार के ताप तकलीफ है, तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही लिखा है तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद् भागवत के इस कथा कैसी है, तापत्रय उन्मूलनम, उन्मूलनम उसको उखाड़ती है, इन तापत्रयों से हमें मुक्त करती है ये भागवत कथा। ये मृत्यु तो वैसे किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, जातश ही ध्रुवम मृत्यु भगवान ने कहा, और कोई निश्चित बात है हमारे जीवन में तो एक बात निश्चित है, जातश ही ध्रुवम मृत्यु, हमने जन्म लिया है तो मृत्यु जरूर होगी, लेकिन और एक समय की बात है जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया, कई सारे प्रश्न पूछे थे, उसमें एक प्रश्न ये भी था, कहो किम आश्चर्यम, प्रश्न क्या था, किम आश्चर्यम, सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात कौन सी है इस संसार में, ये प्रश्नोत्तर ये संवाद यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के बीच का ये संवाद महाभारत में है, तो जवाब में युधिष्ठिर महाराज कहे, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् स्थावरम् शेषः स्थावरम् इच्छन्ति अतः किम् आश्चर्यम् परम्। अहानि अहानि, हर रोज भूतानि गच्छन्ति, मनुष्य जाते हैं, कहाँ जाते हैं, यमालयम्, यमपुरी जाते हैं, लेकिन शेष है, लेकिन जब अब तक आज तक जो नहीं गए बचे हैं शेष है, वो क्या सोचते हैं, स्थावरम इच्छन्ति, वो तो सोचते हैं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो मन हम यही रहने वाले सदा के लिए, तो ये जो विचार है स्थावरम इच्छन्ति, ये जो विचार है ये है अतः किम आश्चर्यम परम, इससे भी कोई बड़ा आश्चर्य हो सकता है। तो कोई कहता है ताजमहल एक बड़ा आश्चर्य है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, संसार भर के लोग देखने के लिए आते हैं, और भी कई सारे वंडर्स है, ताज भी एक माना जाता है। लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्य वाली कोई बात है तो कौन सी है, ये स्थावरम इच्छन्ति, शेषः स्थावरम इच्छन्ति। तो ये हम सभी की समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। Someone has to watch the tent to this. इसीलिए हमने वैसे याद दिलाई थी कल या परसों, हम सभी की मृत्यु कब होगी, कितने दिनों में, 7 दिन। इसीलिए कथा सुनते जाओ, 7 दिवस कथा सुनेंगे तो फिर संडे को भी नहीं मरेंगे, मंडे को भी नहीं मरेंगे, और थर्सडे को भी नहीं, और फ्राइडे हम मरेंगे नहीं। मरेंगे तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, एक बार जन्म लिया है शरीर तो उसे तुकाराम महाराज जैसे हम सभी सदेह तो नहीं लौटेंगे। तुकाराम तो गए, अमी जा तो अमझा गावा मणे, हाँ कहाँ जा रहे हैं, हम अपने गांव जा रहे, राम राम मंडली नौ, राम राम। तो वे गए, उनकी कोई समाधि तो है नहीं, और संतों की भक्तों की महात्माओं की समाधियाँ है, तुकाराम महाराज की समाधि कहाँ है। कीर्तन करते करते ही वैकुंठ गमन। तो वैसे ये बात तो बड़ी अद्भुत है, लेकिन हमने शरीर को प्राप्त किया है तो त्यागेंगे एक बार, लेकिन पुनः पुनर्जन्म नहीं थी भगवान का, पुनः माँ में थी, मुझे मेरी ओर आएगा, मृत्यु को प्राप्त नहीं, इस शरीर के त्यागने के उपरांत पुनर्जन्म नहीं थी। तो हम वैसे उचित कार्यकलाप में व्यस्त है, समस्या है उसका, कई सारी उलझने हैं, तो सुलझन क्या है, श्रीमद् भागवत। और उपाय नहीं है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हाँ घुमो पूरा, हरे कृष्णा हाँ फास्टर जल्दी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे,
आखरी आखरी
कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम
हरे। मैं कहने जा रहा था कि आखिरी सांस तक अगर हम ये नाम लेते रहेंगे तो मृत्यु आने के समय कहाँ है, मृत्यु तो तब आता है जब हम ये नहीं कहते हैं, कहते ही जाएंगे। कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि ही करते हैं तो क्यों आएगा मृत्यु। मृत्यु सर्वहरश्च अहम्, कौन आएंगे, प्रभु आएंगे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से ही निकले, आप आ जाना तो प्रभु आएंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे, कथा नहीं सुनेंगे तो प्रभु मृत्यु को भेजते हैं, या तो स्वयं आते हैं नहीं तो अपने एजेंट को भेजते हैं, तो मृत्यु उनका एजेंट है। चिन्तयामास भगवान् हरिकारणमानुषः तद्देशकालानुगुणं स्ववतार प्रयोजनम्। तो इस सेना ने जब घेर लिया था, जरासंध की सेना ने मथुरा को घेर लिया, तो प्रभु थोड़ा विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अपने अवतार का प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन का स्मरण किए, प्रयोजन तो परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो इस प्रयोजन का स्मरण प्रभु ने किया, तो उन्होंने भी संकल्प किया, हनिष्यामि बलम हि एतद् भूविभारम समाहितम मागधेन समानीतम वश्यानाम सर्वभूभुजाम। मागधेन, मगध के राजा मागध जरासंध, उसने ये जो सारी सेना एकत्रित की है, वो कई राजा का राजा बना था, ये या जरासंध, तो उसके अधीन जितने राजा थे उनकी सेना भी लेके आया। तो प्रभु ने सोचा ये सुअवसर है मेरे लिए। मेरा उद्देश्य क्या था, क्या है, विनाशाय च दुष्कृताम। तो जरासंध अगर दुष्ट है तो उनके मित्र भी दुष्ट ही होने चाहिए, तो अच्छा किया। अब मुझे हर गांव हर नगर जाने की आवश्यकता नहीं, मुझे घर घर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो रिटेल बिजनेस हुआ, अब थोड़ा होलसेल करते हैं, उसका भी वध करो, उसका भी वध करो, दुष्टाना विनाशाय च दुष्कृताम, ये भी विना इसका भी विनाश करना है, तो अच्छा। ये असुर 23 अक्षोहिणी सेना तो बहुत बड़ी सेना होती है, आपने सोचा नहीं होगा, महाभारत के युद्ध में जो सेना थी वो केवल 18 अक्षोहिणी सेना थी। महाभारत में जितनी सेना, उस युद्ध में जितनी सेना एकत्रित, उससे भी अधिक, 5 अक्षोहिणी अधिक सेना ये जरासंध लेके आया है। और पहले ही सुन लीजिए, इस प्रकार वो 18 बार 23 अक्षोहिणी सेना लेके आया, ये पहली बार आया है। तो प्रभु ने जब संकल्प किया, और उनका ये भी संकल्प था कि मैं जरासंध के सेना का वध करूंगा, उसको बचाऊंगा, तो फिर पुनः लौटेगा, अपने राजधानी जाएगा, वहां से सबको टेलीफोन करेगा, कुछ ईमेल मैसेज भेज सकता है, मोबाइल भी खूब चलता है आजकल, तो सबको बुला के पुनः सेना लेके आएगा, फिर आई विल बी इन बिजनेस, मेरा बिजनेस चलता रहेगा, विनाशाय च दुष्कृता, मैं घर बैठे बैठे ये विनाश करता जाऊंगा दुष्टों का। तो जरासंध ने बहुत बड़ी सेवा की है, बड़ी सहायता की है प्रभु की, उसने आहुति चढ़ाई स्वाहा, 23 अक्षोहिणी सेना स्वाहा, एक हुआ फिर और एक स्वाहा, तो उसने 18 आहुतियाँ चढ़ाई 23 अक्षोहिणी सेना की। एवं ध्यायति गोविंद आकाशात् सूर्यवर्चसौ, ऐसा सोच ही रहे थे, संकल्प कर ही रहे थे प्रभु, तो इतने में आकाश से दो तेजस्वी रथ नीचे अवतरित हुए। आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया, और वह उसमें कई सारे अस्त्र शस्त्र भी थे, दिव्यानि आयुधानि। दृष्ट्वा तानि ऋषिकेशः संकर्षणम् अथ ब्रवीत, तो उनको जब रथ को देखा और अस्त्र शस्त्रों को देखा और बलराम जी को दिखाते हुए ऋषिकेश श्री कृष्ण कहते हैं, पश्य आर्य व्यसनम प्राप्तम यदूनाम त्वावताम प्रभो, खतरा पैदा उत्पन्न हुआ है, देखो देखो तो सही है आर्य, ये सम्माननीय बलराम दाऊ जी भैया, और हमको वैसे आपके कारण ये सुरक्षित है राजधानी मथुरा। एष ते रथा आया, तो ये रथ आए हैं और कई सारे शस्त्र अस्त्र भी पधारे हैं, प्रकट हुए हैं, इनका हम उपयोग करेंगे। भूमेर भारम अपाकुरु, इस भूमि के भार को आप हटाइए। आपको शायद स्मरण नहीं होगा, मुझे स्मरण है, वो भूमि जब गाय का रूप धारण करती हुई और क्रंदन रोती हुई देवताओं के पास पहुंची थी, लेकिन उसकी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, बहुत बोझ महसूस कर रही थी, कई सारे राक्षसी प्रवृत्ति के राजा और प्रजा भी उसका बोझ असह्य बन चुका था पृथ्वी के लिए, तो वो रोती हुई आई, तो देवता भी कुछ उस समस्या का हल नहीं कर पाए, तो सभी आए थे मेरे पास, तो मैंने वचन दिया हाँ मैं आ रहा हूँ, देवताओं आप पहले जन्म लो ब्रजमंडल में, फिर उचित समय पर मैं भी वहाँ प्रकट होऊंगा। तो उस पृथ्वी के भूमेर भारम अपाकुरु, मैंने वचन दिया है पृथ्वी माता को, मैं आऊंगा और तुम्हारे बोझ को घटाऊंगा मिटाऊंगा, अब ये सुअवसर प्राप्त है हमें। इतना कहे तो आर्य बलराम तो तैयार ही थे, निर्जगमतु स्वायुधाढ़ बलेन अल्पयसी आव्रतो, तो छोटी सेना लिए कृष्ण और बलराम और मथुरा के बाहर आए उस सेना के साथ, शंखम दधमो, और बाहर मथुरा के बाहर आते ही उन्हें शंख ध्वनि की, दारुक सारथी, और दारुक नाम के भगवान के सारथी रथ को हाँक रहे थे,
Thank you.
modern shankh. तो जरासंध ने कृष्ण और बलराम को देखा समक्ष, तो कहते हे कृष्ण, पुरुषोधम गोविंद मादि पुरुषम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम को पागल कहे क्या कहे, हे कृष्ण पुरुष पुरुषाधम कह के पुकारे, संबोधित किया, कहते न त्वया योद्धुम इच्छामि, तुम्हारे साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम तो बालक हो. ये वैसे लज्जा की बात होगी. और तुम जैसे योद्ध से या ही बंधुन बंधुहन, तुम तो अपने आप तो इष्ट मित्रों को परिवार के सदस्यों को भी मारने वाले हो. कंस का हत्यारा है, इसलिए ये कह जरासंध के वचन है, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा. हाँ हाँ बलराम, यदि श्रद्धा युद्धस्व, अगर तुम श्रद्धा रखते हो युद्ध में तो तैयार हो जाओ. लेकिन सुनो, हित्वा वा मद शरीर छिन्नम देहम, बकवास चल रहा है सब जरासंध का. तुम्हारा देह और सिर छिन्नम काटूंगा, ये संभव है? ये संभव नहीं है. भक्त जानते हैं, अभक्त नहीं जानता. नैनम छिंदंती शस्त्राणी, आत्मा कैसा है? अगर आत्मा अगर वैसा है तो परमात्मा के संबंध में क्या कहा जाए? आत्मा कैसा है? छिन्नम शस्त्राणी, छिन्दम शस्त्राणी, शस्त्र से आत्मा को काटा नहीं जा सकता. और भगवान तो पूरे के पूरे आत्मा है, सच्चिदानंद विग्रह, पूरे के पूरे आत्मा परमात्मा है, नाखून से सीखा तक पूरे आनंद घन सच्चिदानंदमय आत्मा परमात्मा. तो कोई अस्त्र शस्त्र काटने का संभव ही नहीं है. तो जरासंध ये मूर्खता है, अज्ञान है. श्री भगवान वाच न वै शूरा विकथन्ते दर्शयन्ते इव पौरुषम. जो शूर नहीं होते हैं वो ऐसे डिंग मारते हैं, ऐसे बकते रहते हैं. और जो पुरुष होते हैं शूर वीर होते, कुछ दिखलाते हैं अपना, अपनी वीरता शौर्य. अरे तुम तो मरने वाले ही हो, तो हम तो तुमसे युद्ध ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करना चाहते. ऐसे प्रभु तुम तो मरने वाले हो, मुमूर्षतः, तो तुम्हारे वचनों को हम गंभीरता से नहीं ले रहे. श्री शुक उवाच, तो वैसे युद्ध शुरू होता, द बैटल स्टार्ट्स, बड़ा फियर्स. एक विशेष तो हम लोग कल्पना है, 23 अक्षौहिणी सेना, और वैसे ही वैसा युद्ध जैसे महाभारत, क्योंकि सामान्य बात दोनों युद्धों में ये है कि यहाँ भी कृष्ण, महाभारत में भी कृष्ण थे, वैसे बलराम नहीं थे. बलराम ने तीर्थ यात्रा की महाभारत के युद्ध के समय, लेकिन इस युद्ध में तो दोनों भी प्रभु है. अब डर गए क्या? रखो रखो आप, कुछ लोग दौड़ रहे बाहर। महाभारत मथुरा में हो रहा है, पुणे में नहीं, दूर है यहां से। तो इतने में 23 अक्षौहिणी सेना स्वाहा, एक बचे हैं जरासंध, जग्राह, और वे पकड़े गए हैं बलराम द्वारा। वीरथम, उसका रथ रहित, रथ भी नहीं रहा, उसके भी टुकड़े हुए। हता अनीकम अविष्टासुम, एक ही बात बची थी वैसे, यह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उसकी केवल सांस ही बची थी और कुछ नहीं बचा था। सिंहा सिंहम इव औजसा, जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को अपने तेज से घेर लेता है, पकड़ लेता है, तो वैसे जरासंध को भी, ये तो लोमड़ी भी नहीं है, सियार भी नहीं है, लेकिन यह सिंह की उपमा दी है। तो एक सिंह हुए बलराम, जिन्होंने जरासंध को पकड़ा हुआ है, तो दूसरा सिंह जरासंध। पाशैर वारुण मानुषै, तो वरुण पास से वो पकड़े है जरासंध को, पकड़े हैं। तो इतने में ये सोच के कि अब अंत ही आने वाला है, अब वध होगा जरासंध का, तो कृष्ण रोकते नहीं, नहीं, वैसे उनका संकल्प भी था ये कि हम सेना को मारेंगे, जैसे आप सुने हो, हम इसको बचाएंगे। तो अंत में जरासंध को छोड़ दिए, ये और भी हमारा कुछ सुविधा कर सकता है, और भी राक्षसों को पकड़ के जरूर शायद ला सकता है, तो छोड़ देते हैं। तो जब मुक्त हुआ तो बड़ा लज्जित हुआ, और उसने तो सोचा कि अब तो मैं हिमालय जाके तपस्या ही करूंगा लेकिन जब रास्ते में था तो हुआ, कुछ लोगों ने उसको समझा बुझा के हिमालय की ओर जाता हुआ या जरासंध उसको पुनः अपने राजधानी वाराणसी भेजे। मगध, मगध, मगध राज कहाँ है वो? बिहार में मगध है। विकीर्यमाना कुसुमैर, तो ये जब कृष्ण और कृष्ण बलराम की उनकी जीत जब हुई तो पुष्प वृष्टि हुई आकाश से, देवता बधाई देने लगे। उपगीय मान विजय, कृष्ण और बलराम की विजय की गाथा गाने लगे। सूत माघद वंदी भी शंक दुंदु भयो, कोई शंख बजा रहे, वीणा वेणु 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 वेणु, मृदंगानी सुखदेव गोस्वामी, ये सब यहाँ नाम लिखे कौन कौन से वाद्य बज रहे हैं। हर व्यक्ति अपने ढंग से, कोई रंगोली तो कोई कई ढंग से अपना हर्ष राम विजय उत्सव जैसे मनाए थे, तो यह कृष्ण बलराम विजय उत्सव मनाया गया। दुंदुभिया बज रही है, सिक्त मार्गाम हृष्ट जनाम पताका भीर अलंकृताम, और सारे मथुरा को सजाए, समलंकृत किए, सारे रास्ते साफ सुथरे, और जल का छिड़काव हो रहा है। कैसा जल? सुगंधित सैंडल चंदन का गंध जिस जल में है, तो हर्ष और उल्लास सारे नगरी भर में, सारे मथुरा के वासी की बड़े प्रसन्न है। जय कृष्ण बलराम की। एवं एवं, वैसे एक ही समय का वर्णन सुनाए हैं सुखदेव गोस्वामी। एक समय कैसे 23 अक्षोहिणी सेना को परास्त किए, मगधराज जरासंध को उसकी जान बचाए, लेकिन एक बार का वर्णन करके वो कहते एवं, इस प्रकार वो 17 बार हर वक्त 23 अक्षोहिणी सेना लेके आता है। युयुधो युयुधे मागधो, उसने युद्ध किया यदु भी ही यदुओं के साथ, और पुनः वो कृष्ण पालितई, कृष्ण जिन यदुओं की रक्षा करते हैं उनके साथ युद्ध, एक असफल युद्ध, हर वक्त 17 बार असफलता को प्राप्त किया, और हर वक्त बेचारा अकेला ही लौटता रहा मगध देश। अष्टादश संग्रामे, अब 18वीं बार उसका आने का समय हुआ था। वैसे साल में एक बार आता था, उसका सीजन था। तो एक यस 18 वर्षों तक, मतलब साल में एक बार, और फिर पुनः जाके तैयारी करके जुटा के सबको बुला के आमंत्रित करके मथुरा, चलो मथुरा। तो जरासंध का आने का समय हो ही चुका था। इतने में नारद प्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यद्रश्यत, नारद ने प्रेरित की हुआ ये काल यवन भी आधम का, काल यवन नाम का दूसरा एक यवन, बड़ा निम्न जाति का ये व्यक्ति, लेकिन बना है राजा। वो युद्ध करना चाहता था ऐसे शूर वीर के साथ, जिसको परास्त करेगा तो उसका नाम संसार भर में हो, ऐसा सोच रहा था। तो नारद जी से सलाह की, ऐसा कौन शूर वीर है जिसके साथ मैं युद्ध करूंगा और पराजित जब करूंगा उस राजा को, उस व्यक्ति को, तो मेरा नाम विश्व भर में फैलेगा। तो नारद जी झट से, हाँ हाँ मैं जानता हूं, कृष्ण नाम के एक राजा है, उनका सारा नाम गांव सब बता दिया। कृष्णा जिनका नाम है कहे, और गोकुल जिनका धाम है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसा सारा बताता था। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, और कुरु पांडवों का युद्ध मचायो, ये सब उन्होंने किया है, युद्ध करते रहते ये। वैसे जब छोटे थे तो ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ग्वाल बालकों के साथ धेनु गाय भी खूब चराई उन्होंने, लूट लूट दधि माखन खायो, ये लूटे रहे हैं, लूटते किसको, बड़े पहलवान होंगे, बहुत मक्खन खाए हैं, तो उनके साथ तुम कुश्ती खेलो, जाओ लड़ो, उनका बड़ा नाम है। तो उन्होंने सारा नाम गांव पता फोन नंबर भी ले लिया, और ढूंढते 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 पूछते पूछते मथुरा पहुंच गया। तो कृष्ण अब बड़े चिंता में थे, और ये काल यवन में से बहुत बड़ी सेना लेके आ, उसकी सेना में 3 करोड़ सैनिक थे, इतनी बड़ी सेना लेके आया। तो वो बलराम से कहते, अगर हमको ये व्यस्त रखता है ये काल यवन युद्ध में, और हम जब उसके साथ जुटे हैं, तो इतने में अगर जरासंध भी आता है तो फिर हमारे यदुओं का, मथुरा वासियों का, हमारे अब तो इष्ट मित्रों का क्या स्थिति होगी। बंधुन वधिष्य अथवा नेशते स्वपुरम बलिम, 2 बातें कर सकता है ये जरासंध। हम जब काल यवन के साथ युद्ध करने में व्यस्त रहेंगे, इतने में या तो मथुरा के सभी वासियों का मथुरा वध कर सकता है, या सभी को अपने पूरी ले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे हम। तस्मात् अद्य विधा विधा श्यामः दुर्गम द्वीप द दुर्गमम, इसीलिए हाँ यस आई हैव आइडिया। अब मैं एक सोच रहा हूँ, वैसे ज़्यादा एडवांस प्लानिंग नहीं करना पड़ता भगवान को, ऐसे सोच लिए क्या किया जाए, कैसे रक्षा कर सकते हैं मथुरा के निवासियों की, ऐसा मन में विचार आते ही ये उलझन थी तो सुलझन विचार, हाँ यस एक बात कर सकते हैं हम, हमारे सारे मथुरा वासियों को हम एक ऐसे स्थान पर लाके सुरक्षित रख सकते हैं, जो स्थान कैसा हो, द्वीपद दुर्गमम, जहाँ मनुष्य नहीं पहुंच सकता, ऐसा दुर्ग ऐसा किला ही हम बनाते, दुर्ग किले को भी कहते दुर्ग, जिसके अंदर प्रवेश करना दुर्गम, जाना दु कठिन, एक सुगम एक दुर्गम होता है, सुगम यात्रा दुर्गम। तो किला कहाँ बनाएंगे, किला बनाएंगे समुद्र में, किला बनाएंगे द्वारका में, समुद्र में बनाएंगे। इति सम्मंत्र्य भगवान दुर्गम 12 योजनम, और झट से वो तैयार भी हो गया, वो किला तैयार हुआ, और अंदर कितना कितना स्थान था, 12 योजनम, 1 योजन कितना मील आपको बताए थे, 8 मील, तो 12 योजन कितना हुआ, लगभग 100 कुछ कम, इतने मील अंदर उसका लंबाई व्यास के, अंतः समुद्रे नगरम, कहते कि ये जमीन उधार ली थी समुद्र से भगवान ने ये किला दुर्ग बनाने के लिए, और जब उनकी लीला का समापन होगा भगवान लौटेंगे तो फिर पुनः समुद्र में समुद्र को वापस की जाएगी, तो वैसे ही हुआ। तो छोटा ही स्थान अब बचा हुआ उस द्वारका का, जिसको बेट द्वारका कहते हैं, बेट मतलब आइलैंड द्वीप, पूरा ही द्वीप था, अब छोटा सा बचा हुआ है। तो विश्वकर्म त्वाष्ट्रम विज्ञानम शिल्प नैपुणम, तो शिल्प कला स्थापत्य कला में जो निपुण विश्वकर्मा स्वर्ग के देवताओं के जो स्थापति है आर्किटेक्ट, तो उन्होंने ये सब इस नगरी की स्थापना की रातों रात या कुछ क्षणों में ही। भगवान के मन में इच्छा प्रकट हुई तो उसी के साथ वो नगरी की स्थापना भी वहां हुई। उसमें उद्यान उपवनान्वितम, उद्यान थे उपवन थे, कई सारे गोपुर थे गेट्स, चातुर्वर्ण्यम जनाकीर्णम, बड़े बड़े चौराहे थे और तालाब थे, तालाबों में हंस पंछी और कमल के फूल, सारा वातावरण पवित्र उस नगरी में। बड़े बड़े प्रासाद महल ब्राह्मणों के लिए और क्षत्रियों के लिए, अलग अलग व्यवस्था, सारी सुविधाएं। 5000 वर्ष पूर्व की बात है, सप्तपुरिया प्रसिद्ध है भारतवर्ष की, उसमें द्वारकापुरी है, फिर अवंतीपुर भी है, मथुरा भी उसमें है, हरिद्वार भी है, काशी भी है और कांची भी है, अयोध्या भी है, सप्तपुरिया। तो ये प्रसिद्ध पुरी है शहर, आज के शहरों से तुलना भी नहीं हो सकती, कोई थूकेगा भी नहीं आजकल के शहरों की ओर, और थूकना पड़ता ही वैसे कभी कभी। बंबई में प्रवेश करते क्या करना पड़ता है, तो ऐसे नगरिया, मैन मेड द कंट्री गॉड मेड द टाउन, भगवान ने सब कितनी सृष्टि सुंदर बनाई है, और हम लोगों ने आजकल हम लोगों ने शहर बनाए, कितने गंदे शहर, जंगल, क्योंकि वहां पशु रहते हैं, वैसे कितने पैर के द्विपाद पशु, तो माइंड में पॉल्यूशन है, मन में प्रदूषण है, तो सारा बाहर भी सारा प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, सब हर तरह का पॉलिटिक्स, हाँ, हर क्षेत्र में, क्योंकि मन में प्रदूषण है। लेकिन लोगों के मन शुद्ध स्वच्छ रहा करते थे तो उनके शहर स्वच्छ, सब हर बात पवित्र। वो प्राचीन सभ्यता ही मूल सभ्यता है, शाश्वत सभ्य पुरुषों का समाज। सुधर्मां पारिजातं च महेन्द्रः प्राहिणोधरे, तो महेंद्र हमारे इंद्र, उन्होंने पारिजात के वृक्ष भी ला के दिए द्वारका के लिए। इस प्रकार हर व्यक्ति ने अपने ढंग से सेवा की, उस धाम की, उस नगरी की। तत्र योग प्रभावेन नित्वा सर्वजनम हरि। नेक्स्ट दूसरे फिर मथुरा के सारे निवासी ट्रांसफर किए, स्थानांतरित किए गए मथुरा से द्वारका में, द्वारिका में। प्रजापालेन रामेन कृष्णा समनुमंत्रितः। तो बलराम प्रजा की रक्षा कर रहे थे मथुरा में, जब दुर्ग का निर्माण हो रहा था, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन जैसे भी निर्माण हुआ तो सारे व्यक्ति वहाँ भेजे गए, सारे मनुष्य, सारे मथुरा के वासी, वसुदेव देवकी इत्यादि इत्यादि का संख्य लोग, और पुनः कृष्ण और बलराम मथुरा में। बलराम तो वही थे और कृष्ण भी लौटते हैं। निर्जगाम पुरद्वारात पद्म माली निरायुधः। तो प्रातःकाल का समय था, अब सारी मथुरा की जनता तो सुरक्षित है द्वारका के उस दुर्ग में, उस नगरी में, उस किले में। तो प्रभु जब पहुँचे हैं मथुरा तो प्रातःकाल का समय था, और मथुरा से वे बाहर आ रहे हैं, मथुरा नगरी से। और उस वक्त काल यवन ने देखा कृष्ण को। तम विलोक्य मतलब देखकर, किनको देखकर? कृष्णम विलोक्य, कृष्ण को देखे। कृष्ण क्या कर रहे थे? वे निष्क्रांतम, बाहर आते हुए कृष्ण को देखा। उज्जिहान इव उडुपम, ऐसे पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होता है पूर्णेन्दु, पूर्णिमा के दिन, उसी प्रकार ये कृष्णम, कृष्ण उस नगरी से बाहर आ रहे हैं, जैसे चंद्रमा बाहर ऊपर आता है तो कृष्ण नगरी से बाहर निकल रहे हैं, मानो कोई चंद्रमा ही चल रहा है, से तेजस्वी। दर्शनीयतमं श्यामं, बड़े दर्शनीय, दर्शन देखने लायक, श्याम वर्ण के वो व्यक्ति, पीत कौशेय वाससम, और पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, जो रेशम के वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहने हैं। श्रीवत्स वक्षसम, उनके सीने पर यहाँ एक श्रीवत्स का चिन्ह है, कुछ बाल है भगवान के, एक पंक्ति है बालों की, उनके वो लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। भ्राजत कौस्तुभ, और गले में कौस्तुभ मणि। प्रथु दीर्घ चतुर बाहुम, और दीर्घ और लंबे और बलवान, उनकी बाहु है चार है। नव कंज अरुण इक्षणम, और उनकी आंखें नए नए कमल के फूल, और अरुण उसमें कुछ किंचित सी लालिमा है, और वो कमल के फूल खिल रहे हैं, खिलता हुआ प्रफुल्लित वो नयन। ये सब काल एवं भाग्यशाली है, ये सब देख रहा है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर, क्या क्या देखा? जब कृष्ण की ओर देखा तो क्या दिखाई दिया? ये वैसे ज्यों के त्यों वर्णन है। हम लोग अगर पढ़ेंगे इसको, जैसे पढ़ रहे हैं, इसका ध्यान करेंगे, यही भगवान का वर्णन है, ऐसे ही भगवान है। हम सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, इसी से रूप बनेगा भगवान का। जो मन में है वैसे प्रभु प्रत्यक्ष साक्षात्कारी पुरुष देखते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, देखते हैं संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय में देखते हैं। कैसे भगवान को देखते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो भगवान का रूप वैसे अचिंत्य है, हमारे चिंतन के परे का विषय है, लेकिन ज्यादा दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, श्रवण मात्र से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वेदेश दुर्लभम और दुर्लभम आत्म भक्तों, भक्तों से शास्त्रों से या कभी शास्त्रों से कठिन भी है कुछ बातें समझने में, वो सुलभ होती है जब हम भक्तों से भगवान का वर्णन सुनते हैं, भगवान के रूप माधुरी का, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनते हैं। नित्यम प्रमुदितम श्रीमत् सुकपोल सुचिस्मितम मुखारविंदम, तो ये सुंदर सुंदर वर्णन चल ही रहे हैं। ये इस प्रकार का दर्शन, ऐसे कृष्ण को देखा, ओ काली अवनेसो वासुदेव अयम इति, अय यही तो वासुदेव। वो नारद मुनि ने जो वर्णन कहा था, शायद फोटो भी दिया होगा, तो फोटो देखा, हाँ सेम पीतांबर भी, तो हर बात जो जैसी कही थी वैसे ही वो भी, हाँ वासुदेव अयम, यही तो वासुदेव। पुमान श्रीवत्स लांछनम, विशेष एक बात का उल्लेख, देखो देखो वो श्रीवत्स है ना उनके वक्ष स्थल पर, हाँ ऐसा कहा था, हाँ यही तो वासुदेव है। तो अब योद से अनेना, हाँ इनके साथ मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करने के लिए आया हूं, लेकिन इनके पास तो कोई हथियार नहीं है, तो मैं भी ये कई धर्म युद्ध करना चाहता है, तो उनके पास युद्ध कोई हथियार नहीं, तो अपना भी सारा हथियार उसने फेंक दिया, तो वो स्वयं भी निरायुध बन के युद्ध के लिए तैयार हुआ। तो कृष्ण घनश्याम को थोड़ा इस बात का पता चल गया, हाँ ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, हाँ ये आक्रमण की तैयारी कर रहा है, और कृष्ण की ओर दौड़ने लगा युद्ध की इच्छा से। तो फिर कृष्ण भी दौड़ने लगे और वो पीछे दौड़ने लगा। हस्त प्राप्तम एव आत्मानम हरिनाश पदे पदे, तो हरि क्या करते हैं, लगभग एक हाथ दूर रहते उससे उसके, वैसे वे समझते कि ये तो बड़ा यौवन है, बड़ा नीच व्यक्ति है, ऐ अस्पृश्य है, स्पर्श नहीं करने देते, लेकिन ज्यादा भी आगे नहीं बढ़ते दौड़ते, नहीं तो शायद हताश उदास होके लौट जाएगा, कुछ आशा की किरण हृदय, हाँ पकड़ में आएगा, पकड़ में आएगा, अभी अभी पकड़ सकता हूँ, तभी पकड़ सकता हूँ, ऐसे करते 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 नीतो दर्शयताम दूरम, दूर तक ले गए। वैसे प्रभु की कुछ योजना तो थी, उन्होंने कहा तो नहीं था लेकिन वो सोचे थे, हाँ ये करूंगा मैं। यवनेश अद्रिकंदरम, उस यवन ईश, ये काल यवन को यवनेश कहा है, उसको अद्रिकंदरम एक पर्वत के गुफा की ओर ले जा रहे। पलायनम यदुकुले जातस्य तव न उचितम, कहते कृष्ण को संबोधित कर काल यवन कहता है, अरे तुम तो यदुकुल में जन्मे हो, ऐसा दौड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, रुको रुको। तो ऐसे कुछ अपमानित ऐसे वचन तो पीछे से कह तो रहा था लेकिन भगवान ने ध्यान नहीं दिया। और सुखदेव गोस्वामी कहते नैनम प्राप अहत अशुभ, और भी नहीं छू सका, वो छू क्यों नहीं सका, स्पर्श क्यों नहीं कर सका वो भगवान को। तो सुखदेव गोस्वामी कहते उसका जो पापी जो था अशुभ या पाप क्षीण नहीं हुआ था, पाप से मुक्त नहीं था, इसीलिए वो स्पर्श नहीं कर सका। और प्रभु उसको सीधे उस गुफा में ले गए। गुफा के पास करीब पहुंचते पहुंचते थोड़ा दो चार कदम आगे गए भगवान, और पीछे से काल यवन भागे दौड़े आ रहा था। जैसे ही वो अंदर प्रवेश किया, वहां तो पूरा अंधेरा था, लेकिन एक व्यक्ति लेटा हुआ उसको दिखाई दिया। उसने सोचा यही जो मेरे सामने दौड़ रहा था अभी लेट गया, देखो। असौ दूरम आनीय शीते माम साधुवत, ए तुमने तो मुझे दौड़ाया अब तक, अब तुम साधु जैसा, साधु बाबा जैसे सोए हो। तो वह इतना कहा ही नहीं, उसने पादा समत ताड़यत, उसने लात मारी उस सोए हुए व्यक्ति को, ये समझ के कि यही तो मुझे दौड़ाया जो ये शाम घन, यही तो है। तो उसने लात जब मारी, स उत्थाय चिरम सुप्तः, तो सचमुच दूसरा वो व्यक्ति दूसरा था जो सोया था, उसमें कोई विडंबन कोई ढोंग वगैरह की बात कोई नाटक नहीं हो रहा था। तो जैसे भी उठा, शनैर उन्मिल्य लोचने, बड़े प्रयास के साथ उसको अपनी आंखें खोलनी पड़ी या खोल सका। दिशो विलोकयन पार्श्वे, तो उसने देखा काल यवन को देखा और बड़ा रुष्ट हुआ, क्रोधित हुआ ये व्यक्ति जो अभी भी उठा था, जिसने अपनी आंखें खोली थी। दृष्टिपातेन, तो दृष्टिपात जब किया उस तो समक्ष खड़े हुए व्यक्ति के ऊपर, देह जेन अग्निना दग्धो, उसके साथ ही उस दृष्टिपात से ही उस व्यक्ति काल यवन के शरीर में आग लग गई, फायर, और वो भस्मसात हुआ कुछ ही क्षणों में, और राख का ढेर ही बन गया। अरे वो राज उवाच, जैसे आपके मन में भी प्रश्न होंगे, वो व्यक्ति कौन था जिसको जिसने काल यवन को अपने दृष्टिपात से अग्नि की हुई उत्पन्न अग्नि से जला दिया, भस्मसात किया। तो राजा परीक्षित जो इस कथा के प्रथम श्रोता है, उनके मन में स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वो कौन था, कौन था वो पुरुष, किस वंश का था और गुफा में क्यों सोया था। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते, स इक्ष्वाकु कुले जातो, ओ इक्ष्वाकु कुल का मानधात्र तनयो, मानधात्र नाम के राजा का पुत्र मुचुकुंद इति ख्यातो, मुचुकुंद नाम से विख्यात वो व्यक्ति था। और इतिहास देते समझाते हुए कहते, अधिक जानकारी देते हुए, हाँ इन्होंने देवताओं को खूब मदद की। एक युद्ध में देवता दानवों के साथ युद्ध कर रहे थे, तो ये मुचुकुंद बड़े शूरवीर राजा थे, बड़े बलवान, तो देवताओं ने इनकी मदद ली और जीते उस युद्ध को मुचुकुंद के कारण। ये युद्ध चलता ही रहा, कई महीने या सालों तक चलता रहा और अहर्निश युद्ध चलता ही रहा, तो ये विश्राम नहीं कर पाए थे, सोए नहीं थे कब से। तो देवताओं ने अपनी बड़ी प्रसन्नता कृतज्ञता व्यक्त की और ये भी कहे कि अब तुम जहां से आए हो, नरलोक से, मृत्यु लोक से, वहां तो वैसे अभी लौटने का कोई वैसे प्रश्न नहीं है कि तुम जब से आए हो वहां तो कई युग बीत चुके हैं या कई सदियां बीत चुकी है, तुम्हारा अब कोई वहां नहीं रहा, तुम्हारे इष्ट मित्र तो तुम अब कुछ वर मांगो। वरम व्रणीश्वम भद्रम ते, हम तुम्हारे मंगल की कामना करते हैं, तुम वर मांगो। एक वर हम नहीं दे सकते, रिते कैवल्यम, मुक्ति नहीं दे सकते। देवताओं ने कहा ये भागवत धर्म है, से कह सकते हैं भागवत धर्म है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णुर एव न संशयः, शिवजी अपने परम पत्नी पार्वती को कहते हैं, हे देवी मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णुर एव न संशयः। जहां तक मुक्ति की बात है वो तो विष्णु राम कृष्ण ही दे सकते हैं, हम देवता जो 33 करोड़ देवता कोटि, ये ही हमारे बस का रोग नहीं है। मोटर मांगो, गाड़ी मांगो, मिटे कष्ट तन का, ये सब संपत्ति घर आवे, ये सब हम दे सकते हैं। धनम जनम सुंदरीम, इसकी मांग करो, लेकिन मुक्ति भुक्ति दे सकते हैं, हम भुक्ति दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते। ये भेद है, ये भागवत धर्म, भागवत ग्रंथ, सुखदेव गोस्वामी धर्म की स्थापना हो रही इसी के साथ, धर्म संस्थापनार्थाय। एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः, भगवान विष्णु कृष्ण विष्णु तत्व भगवान के अवतार हमको मुक्ति दे सकते हैं, देवता अवतार नहीं है, देवता इसी ब्रह्मांड के व्यक्ति है, स्वर्ग में जरूर रहते हैं। मुक्त होना मतलब स्वर्ग जाना बिल्कुल नहीं, स्वर्ग से भी परे, ब्रह्मांड से भी परे भगवान का वैकुंठ धाम, गोलोक धाम लौटने को मुक्ति कहते हैं, जो भक्ति का फल है। जिसे भक्ति प्राप्त हुई है वो मुक्त भी है। गुहा विष्टो निद्रया देवदत्तया, और हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम अब जाके विश्राम करो, शांति से तुम यथेच्छ सो लो, विश्राम करो। और ये भी वरदान दिया है, तुम्हारी निद्रा जितनी आवश्यक है वो पूरी होने के पहले मध्य में ही अगर किसी ने तुमको जगाया, निद्रा तुम्हारी निद्रा भंग की, तो हम तुमको ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, उस व्यक्ति को तुम भस्मसात कर सकते हो। समझ गए? तो राजा परीक्षित ने जो जिज्ञासा की तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ये समझाए हैं। तो ये कालयवन तो भस्म हुआ, तो दो व्यक्तियों ने प्रवेश किया था गुफा में, अब कौन बचे? कृष्ण बचे। तम आलोक्य ऐसे जैसे कृष्ण का दर्शन काल यवन ने किया था प्रातः काल सूर्योदय के समय, सूर्य का भी उदय हो रहा था, तो कृष्ण भी उदित हुए, बाहर आए नगरी से। तो अब कुछ समय के बाद उस कृष्ण को अब मुचुकुन देख रहे हैं, तो कैसे कृष्ण सुखदेव गोस्वामी के, तम आलोक्य घनश्यामम पीत कौशेय वाससम, वही वर्णन है, लगभग वही वर्णन है। कृष्ण तो एक ही है, वर्णन कोई अलग तो, क्या सुबह पीताम्बर थे, अब नीलाम्बर तो नहीं कह सकते। नीलाम्बर कौन हुए? तो बलराम। तो जहां भी वर्णन आता है भगवान किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, पीताम्बर ही। पीताम्बर मतलब वैसे पीत अम्बर, पीला वस्त्र मतलब पीताम्बर, लेकिन पीताम्बर पहनने वाले व्यक्ति ऐसा भी एक समास, और उससे कृष्ण ये नाम निकलता है। पीताम्बर मतलब कौन, और पीताम्बर मतलब कौन थोड़े ही प्रश्न पूछा है। पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र हो गया और क्या, लेकिन दूसरा प्रश्न ये होता कि पीताम्बर मतलब कौन, पीताम्बर मतलब कृष्ण। पीला वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति पीताम्बर, और फिर नीलाम्बर भी है वैसे, नीले वस्त्र पहनने वाले नीलाम्बर बलराम। चतुर्भुजम चारु प्रसन्न वदनम प्रेक्षणीयम अपि च वयसम, ये सारे सुंदर वर्णन प्रभु के हैं। तो प्रभु को देखा, अब मुचुकुंद प्रभु को देख रहे हैं, ये सारा सुंदर वर्णन। मुचुकुंद उवाच, मुचुकुंद, अब मुचुकुंद और भगवान का यहाँ संवाद है। अब आपके लिए होमवर्क, आप पढ़िएगा इस संवाद को। वयम तु पुरुष व्याघ्र ऐक्ष्वाका क्षत्र बंधवः, मैं तो इक्ष्वाकु वंश का मुचुकुंद नाम से जाना जाता हूँ, और आपका भी परिचय बताइए अपना परिचय, मैंने और भी उन्होंने कई बातें कही है अपने संबंध में मुचुकुंद ने। तो हुआ ये जानना चाहता है आपका परिचय, मैं आए आस रिक्वेस्ट, मैं क्या पूछ सकता हूं? प्रत्याह प्रहसन वान्या मेघनाद गभीरया। भगवान जब बोलते हैं तो भगवान की वाणी कैसी है? मेघ मेघ मेघनाद से डीप, बड़ी गहराई है भगवान के वाणी में, और गंभीर्य। श्री भगवान उवाच, जन्म कर्म अभिधानानि संति मे अंग सहस्रशः। तुमने तो तुम्हारा नाम कह दिया, मुचकुंद हो गया एक नाम, लेकिन मेरा नाम अगर तुम पूछोगे, मेरे हजारों नाम है। और गोरखपुर के दुकान में जाओ, वहां सहस्र नाम तुम खरीद लो, पढ़ो मेरे नाम, ये हरे कृष्ण वाले बताएंगे तुमको। हाँ, भगवान प्रभु जानते हैं। न शक्यन्ते तो असंख्यमेन अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। कितने नाम? अनादि अनंत रूपम। जैसे समुद्र की जो तरंगे है, वेव्स, उसकी कोई संख्या कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार भगवान के कई असंख्य नाम, असंख्य रूप। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा कहते हैं आपके कई नानावतारम करोत् भुवनेषु, तो मेरा परिचय तुमने पूछा तो क्या कहूं। विज्ञापितो विरिंचेन पुरा अहम धर्म गुप्तये भूमेर भार क्षयाय च। तो भूमि का भार, इस पृथ्वी का भार का क्षय करने हेतु मैं अब प्रकट हुआ हूं। ब्रह्मा ने मुझे वो पृथ्वी और देवताओं की ओर से निवेदन किया था, तो मैं अभी अवतीर्णो यदुकुले गृहे आनंद दुंदुभे। मैं अब यदुकुल में आनक दुंदुभि, मतलब वसुदेव का पुत्र। वदन्ति वासुदेव इति वसुदेव सुतम हिमाम। मेरे पिताजी का नाम है वासुदेव और मेरा नाम उल्टा हुआ,
वसुदेव।
मेरे पिता है वसुदेव और मैं हूं वासुदेव। कालनेमी हता, कालनेमी का वध किया तो वही कालनेमी आ गया कंस के रूप में, तो उसका भी वध अब मैंने अभी कुछ महीने पहले किया, ऐसा रिपोर्ट भी दे रहे हैं। प्रलंब आदि कई असुरों का संहार हो चुका है मेरे द्वारा। इस प्रकार अपना संक्षिप्त परिचय प्रभु दे रहे हैं। मुचुकुंद उवाच, तो प्रभु ही समक्ष है, प्रणाम करते हैं। मुचुकुंदो मुदान्वितः, बड़ी प्रसन्नता के साथ। नमामि पुनः पुनः, बारंबार प्रणाम करते हुए वे कहते, विमोहितो अयम जन ईश मायया। मोहित होके मैंने माया के प्रभाव से सारा सुखाय दुख प्रभे प्रभवेशु सज्जते गृहेशु योषित पुरुषस्य वंचितः। तो हुआ थोड़ा शोक, कैसे मैंने जीवन ऐसे ही खाली फुकट, कहते खाली फुकट गवाया, कोई सदुपयोग नहीं किया मैंने इस जीवन का, मुझे अमृत पीना चाहिए था, लेकिन जानिया शूनिया विष खाई नु। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया शूनिया विष खाई नु। ये थोड़ा ऐसा भाव है, मैंने जानबूझ के क्या जहर पी लिया इस संसार का, लब्ध्वा जन जनो दुर्लभम मात्र मा, भगवान ने मुझे तो ये मनुष्य जीवन तो दिया जो कैसा है दुर्लभ है, पादारविंदम न भजति, लेकिन मैंने भगवान के चरणारविंद का भजन नहीं किया तो किया क्या, जानिया शूनिया विष खाई। जीवन होइल शेष ना भजिले ऋषिकेश, जीवन तो शेष हुआ लेकिन मैंने ऋषिकेश का कभी भजन पूजन नहीं किया, निष्फलो गतो, तो ये सारा निष्फल है मेरा जीवन। कलेवरे अस्मिन घटक कुड्य सन्निभे, तो हुआ ये जो हुआ शरीर है मिट्टी का पुतला है, कहते ये घड़े जैसा है, ये घड़ा है, तो कभी ये बन जाता है मिट्टी का तो कभी टूट जाता है, फिर पुनः बनाया जाता है, कोई दूसरा आकार दिया जाता है उसी मिट्टी से और घड़ा बनता है। जैसे कुम्हार क्या करता है, कुम्हार बनाता ना घड़ा बनाता है मिट्टी से, तो भगवान की प्रकृति बनाती घड़े बनाती है। ये सारे क्या है, कितने घड़े बैठे हैं, कुछ हजारों यहाँ घड़े, कोई आसन में बैठा है तो कोई कहाँ बैठा है, सारे क्या है घड़े ही है, मिट्टी के पुतले हैं। तो वो महाराष्ट्र के कोई संत या गीत में कहते ये भगवान तुम तो कैसे कुम्हार हो, तुम ऐसा तुम बनाते हो घड़ा, तू च घड़ा विशी तू च फोड़ीसी तू बेड़ा कुम्हार, विठला तू बेड़ा कुम्हार। विठला तू बेड़ा कुम्हार, विठला तू बेड़ा कुम्हार, विठला तू बेड़ा कुम्हार, विठला घड़बीसी तू च फोड़ीसी तू बेड़ा कुम्हार, विठला तू बेड़ा कुम्हार, तू च घड़बीसी कुम्हार, विठला पंढरीनाथ महाराज की जय। सैव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विक्रमी भस्म संगीतः। इस मटके को, घड़े को, मिट्टी के पुतले को हम इतना सारा महत्व देते हैं, यहाँ तक कि ये घड़ा ही मैं हूँ ऐसा हम लोग समझते हैं। सबसे बड़ा अज्ञान यही है। देहात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, तीन धातु का कफ पित्त वायु का बना हुआ, या पांच धातु का हो, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश का बना हुआ जो घड़ा है, शरीर है। देहात्म बुद्धि कुणपे, ये देह ही मैं हूँ। देहात्म बुद्धि, कैसी बुद्धि? देह ही आत्मा है, मैं शरीर हूँ, इस प्रकार की बुद्धि देहात्म बुद्धि। और फिर इस देह की सेवा, पेट की पूजा, और दिवस शरीर साजे, दिन में रात में सोते हैं, क्या क्या शरीर की सेवा, और जग गए तो क्या करते हैं? मैं कब शुरू होता है? दिवस शरीर साजे उदिलो अरुण पूरब बागे द्विजमनी गौर अमनी जागे भक्त समूह लैया साथे गेल नगर राजे। थथाई थथाई बाजे लखो घन घन ताहे झांझेर रो प्रेमे ढल ढल सोनारंग चरणे नूपुर बाजे। प्रेमे ढल ढल सोनारंग चरणे नूपुर बाजे। चरणे नूपुर बाजे, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नूपुर बज रहे हैं। प्रातः काल में ही प्रभु निकलते थे, भक्त समूह लैया साथे, साथ में लिए भक्तों को, और नगरों में ग्रामों में जाके कीर्तन किया करते थे, संकीर्तन किया करते थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौर निथाय की
जय।
तो रास्ते में जो भक्त इसका इस प्रकार का प्रचार भी करते हैं लोगों से, अरे तुम तो रात को तुम सोते रहते हो और जैसे भी जग गए तो दिवसा शरीर साजे, दिवसा शरीर। वैसे गाने वाली बात नहीं है, सजाना तो चल ही रहा है, उसके नहीं गाना चाहिए आपको लग, अच्छा सजाना अच्छा होता इसीलिए गाया जा रहा है, नहीं नहीं नाम बिना किचु नाई। हाँ वैसा कृष्ण सुधा, कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्रा कृष्ण नाम सुधा, कृष्ण के नाम की जो सुधा है अमृत का पान करो। नाम बिना किचु नाही को आर चौदह भुवन माझी। नाम बिना किचु नाही को आर चौदह भुवन माझी। नाम बिना किचु किचु नाही, नाम बिना किचु नाही को आर चौदह भुवन माझे। नाम बिना किचु नाही को चौदह भुवन। सारे चौदह भुवनों में संसार में नाम बिना कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।